उपस्थित प्रो परमेश्वरजनों तथा भक्तिवंती माताओं, आज आप लोगों के सामने आने का मुझे अवसर मिला। क्यों? आज सुनामी चली गई, दो दिन के लिए सुनामी जो है कहेगी ना, सुनामी अभी उत्तराखंड गया, फिर पश्चिम में गया, अभी वापस आएगा, तो इसके बीच का समय जो है ना, बीच का समय आपको सूखा पड़ा है, बीच का समय सूखा पड़ा है, सूखा, इसलिए सूखा में बैठने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, जब तक वो सुनामी वापस नहीं आती। तो देखिए, मैं तो कोई वक्ता नहीं बड़ा है, नहीं बात, ये जो कुछ भी बोलता हूं जरा सा कड़ुआ हिसाब से सुनी है, कल मीठा सा आएगा तो परसों मीठा सा आएगा तो फिर बराबर हो जाएगा। शास्त्र में लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थेषु मध्ये मोक्ष एव परम पुरुषार्थ। मानव जीवन में चार पुरुषार्थ है, पहला पुरुषार्थ धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। मोक्ष एव परम पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ तो है, कौन सा पुरुषार्थ है? परम पुरुषार्थ, श्रेष्ठ पुरुषार्थ, और बाकी भी पुरुषार्थ है। बाकी पुरुषार्थ करोगे तो मोक्ष पुरुषार्थ में पहुंचोगे। ये तीन साधनात्मिका है। हमारे यहां वेदांत में साधन चतुष्टय बतलाते हैं। एक परंपरा साधन होता है, एक बहिरंग साधन होता है, एक अंतरंग साधन होता है, एक साक्षात साधन होता है। चार प्रकार के साधनों में से हमको साक्षात साधन में जाना है। तो कैसे जाएंगे? पहले परंपरा साधन का संपादन करना पड़ेगा। परंपरा साधन क्या से जाए? परंपरा साधन यज्ञ दान तपस्व पवनानी मनीषिना कर्मकांड, कर्म करो। तो यज्ञ दान तपादि कर्म करेंगे तो बहिरंग साधन में प्रवेश होगा। जब शुद्ध अंतकरण होगा तो शुद्ध अंतकरण में शास्त्र में प्रवेश होगा। धर्म अर्थ काम में से सबसे पहले साधन क्या है? धर्म। धर्म कर्म आपको करना ही पड़ेगा। धर्म किए बिना आगे जो है ना, बहिरंग साधन में प्रवेश नहीं होगा। पहले परंपरा साधन को अनुष्ठान करो, फिर बहिरंग साधन में प्रवेश होगा। बहिरंग साधन क्या से जाए? बहिरंग साधन है विवेक वैराग्य सत्संपत्ति मुमुक्षुता आदि। सबसे पहले है विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक, विवेक करो। बिना विवेक से वैराग्य नहीं होगा, याद रखना। संसार के पदार्थों का ज्ञान नहीं होने से संसार के पदार्थों को त्यागना अथवा ग्रहण करना कैसे करोगे? किसी को छोड़ना होगा उसको भी जानना पड़ेगा, और किसी को पाना होगा उसको भी जानना पड़ेगा। तो जो अनुकूल होगा उसको पाने के लिए क्रिया करनी पड़ती है, जो प्रतिकूल होगा उसको छोड़ने के लिए भी क्रिया करनी पड़ती है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता के अंदर जो है ना, व्यवहार करना पड़ता है, विवेक करना पड़ता है। तो विवेक के बिना संसार में वैराग्य, तो विवेक क्या चीज है आपको जानते ही हो। नित्यानिष्ठ वस्तु विवेक, सदसद विवेक, जड़ चेतन विवेक, धर्म अधर्म का विवेक। तो इसीलिए मनुष्य शरीर में विवेक होगा, पशु आदि शरीर में विवेक नहीं होगा, याद रखना। विवेक तो है सब में, खाने पीने का विवेक तो सब में है, परंतु नित्य वस्तु क्या, अनित्य वस्तु क्या, धर्म क्या, अधर्म क्या, सत क्या, असत क्या, जड़ क्या, चेतन क्या, इसका विवेक केवल मनुष्य शरीर में ही होता है, और शरीर में विवेक नहीं होता है। और शरीर में केवल आहार निद्रा भय मैथुन से सामान्य में इधर पशु भी नाराणाम, मनुष्य में पशु में बराबर है किसके, इससे अतिरिक्त विषय में खाने पीने उठने बैठने सोने जागने लेने आदि बात इसमें सबका बराबर ही है, परंतु मनुष्य में किसका विवेक है, धर्म अधर्म का विवेक, जड़ चेतन का विवेक, नित्यानित्य का विवेक, सद असत का विवेक, ये विवेक केवल मनुष्य से निमित्त होगा। तो धर्म अर्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मध्ये मोक्ष एव परम पुरुषार्थ, तो मनुष्य को ही मुक्ति मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी, ऐसा क्यों होगा और किसी को नहीं मिलेगा क्यों, ईश्वर के सृष्टि में तो सभी है, पशु पक्षी को मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी, इसीलिए मुक्ति नहीं मिलेगी, ज्ञान नहीं होगा, क्यों रीते ज्ञान न मुक्ति, बिना ज्ञान से मुक्ति मिलने वाली, तो ज्ञान कैसे होगा, बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी तो ज्ञान के लिए क्या चाहिए, रीते ज्ञानात्म मुक्ति जो श्रुति कहती है तमेव विदित्वा अतिमृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते है ना, जो ऋषि का जो उद्घोष है, ऋषि उद्घोष करता है वेद हमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात, मैं इस पुरुष को जानता हूं, वेदाहम एतम पुरुषम, एतम पुरुषम अहम वेद जानामि, मैं इस पुरुष को जानता हूं, बोले कौन है पुरुष, आदित्य वर्णम तमसा परस्तात, जो ज्योतिर्मय है, ज्योतिषाम अभी तक ज्योतिष तमसा परम उच्चते, वो ज्योतियों का जो ज्योति पुरुष है, ज्योतियों का ज्योति क्या होता है, अरे भाई चंद्र सूर्य ज्योति है कि नहीं, चंद्र सूर्य ज्योति है, अग्नि ज्योति है, नक्षत्र ज्योति है, तुम्हारे नेत्र ज्योति है, बुद्धि ज्योति है, मन ज्योति है, ये सब ज्योति है कि नहीं, इन ज्योतियों का भी ज्योति है, जैसे तुम्हारा शरीर है, शरीर में नेत्र ज्योति ही, तो नेत्र को ज्योति कौन दे रहा है, मन ज्योति ही, मन के को ज्योति कौन दे रहा है, बुद्धि ज्योति ही, बुद्धि को ज्योति कौन दे रहा है, प्रकाश कौन दे रहा है, बुद्धि कैसे निश्चय करती है, मन कैसे संकल्प विकल्प करता है, आंख कैसे रूप को देखता है, कान कैसे शब्द को सुनता है, तुमने कभी विचार किया, हमने सुना कैसे सुना, सुना बहरा क्यों नहीं सुनता है, मैंने सुना मैंने सुना मैंने सुना मैंने देखा मैंने देखा, किससे देखा तुमने, तो कहते कहने मैं आंख से देखा, कान से सुना, वाणी से बोला, तो तुमने वाणी से बोला तो वाणी में शक्ति कहां से आई, बाघ इंद्रिय में शक्ति कहां से आई, नेत्र में शक्ति कहां से आई, कान में शक्ति सुनने की कहां से आई, मन में संकल्प विकल्प करने से शक्ति कहां से आई, किसने दिया, जो दिया ये नेत्र ज्योति से भी जो ज्योति है, नेत्र ज्योति का भी जो ज्योति है, बाघ ज्योति का भी ज्योति है, मन ज्योति का भी ज्योति है, वह ज्योति ज्योतियों का भी ज्योति है, प्रकाश है जो भीतर बैठा हुआ है, अग्नि ज्योति रहा शुक्ल शर्मा उत्तरायण, हम गीता में पढ़ती होगी नहीं, ये ज्योतियों का भी जो ज्योति है, वह ज्योति की ज्योति ये कहां है, तुम्हारे भीतर आएगी नहीं, ऐसे ज्योति का भी ज्योतिष रूप जो पुरुष है वो पुरुष को मैं जानता हूं, ऋषि उद्घोष करता है, ढिंडोरा पिता है, वेद अहम एतम पुरुषम अहम वेद जाना मैं, कीदृशम पुरुषम ज्योतिषाम अभी ज्योति ही, ज्योतियों का भी जो ज्योति है उस पुरुष को मैं जानता हूं, महानतम आदित्य वर्णम तमसा परस्ता, तो महान पुरुष है, कैसे आएगा आदित्य वर्णम, तो आदित्य वर्णम आदित्य कैसा है, आदित्य ज्योतियों का ज्योति है कि नहीं, जैसे भगवान ने गीता में बोला जदादित्य कदम जैसे जगत भास रहते खिलम जत चंद्रमसी जत चाग्नो तत्व तो विद्धि मामक, भगवान कैसे बोलते हैं, जदादित्य कदम तेज सूर्य के अंदर जो ज्योति है तेज है प्रकाश है वो तेज किसका है कहते जगत भाषा देखी लाभ निखिल जगत को भाषित करने वाला प्रकाशित करने वाला जो ज्योति है आदित्य के अंदर वो ज्योति भी मेरा ही ज्योति है सदा आदित्य कदम तो दे जगत भाषा देखी लम जट चंद्रमा से जच्चाग्नो जो चंद्रमा के अंदर प्रकाश है अग्नि के अंदर ज्योति है तेज है वो किसका है कहते तो अर्जुन जी कहे क्या, अर्जुन जी कहे कि तुम तो मेरे सामने खड़ा, तुम कैसे, तुम्हारा ज्योति है यो। अर्जुन जी कहे आप तो हमारे सामने खड़े हो, तो आप हमारे सामने तो क्या है, नीलांबुज श्यामला को मलंगम है, तो आप ज्योतियों का ज्योति कहाँ है, आप तो रात्रि का अंधकार बार मिटा सकते हो। तो भगवान का यह मेरा स्वरूप नहीं है, जिस स्वरूप में मैं तेरे सामने खड़ा हूं वो मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो और कोई है। अन्य बात मया तथम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ने मन न समस्ता ने भूता ने पश्य में जगत स्वयं मत परतरम नान्य किंचित अस्थित आनंदय। अभी भगवान कहते मया तथम इदम सर्वम इदम परिदृश्यमान नाम रूपात्मा जगत जो तू देख रहा है ना, ये जगत में मैं व्याप्ता हूं। कैसे व्याप्ता है, जो तेरा स्वरूप में तेरे सामने खड़ा हुआ है, मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप व्यापक स्वरूप है। तो व्यापक स्वरूप क्या है, व्याप्त स्वरूप है, व्यापक स्वरूप है। मत्त पर तरम धन्य किंचित अस्थित धनंजय, हे धनंजय मेरे परे मिजोर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है मेरा ही स्वरूप है। मया तथा मिजम सर्वम, इजम माने ये जो परिदृश्य नाम नाम रूपात्म जगत तू देख रहा है, इस सब में मैं ही हूं। कैसे मैं आप है, जैसे नमक में खड़ा बना है, गुड़ में मिठास बना है, जैसे लहरों में जल व्यापता है, ऐसे मैं सब में, मेरे सिवा दूसरा कुछ है नहीं। तो आदित्य जदादित्य गतम तेज, जो सूर्य में तेज है वो तेज मेरा है। जिस रूप में मैं तेरे सामने खड़ा हूं मेरा स्वरूप नहीं है, याद रखना ये है मेरा माइक स्वरूप। जो स्वरूप में मैं तेरा सामने खड़ा हूं ना, ये मेरा माइक स्वरूप है। इसीलिए सूर्य के अंदर चंद्रमा के अंदर जो प्रकाश आयु प्रकाश भी मेरा ही है। तो तमेव विदित्व अति मृत्यु में नान्यपंथा विद्यते नहीं, उस आत्मा को जान करके ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तो यहां ऋषि कहते हैं वेदाहम एतम पुरुषम, एतम पुरुषम अहम वेद, कीदृशम पुरुषम, कैसा पुरुष है, आदित्य वर्णम तमसा परस्तात, अज्ञान से परे, अविद्या से परे, अंधकार से परे। तमेव विदित्वा, जानने का फल क्या है, तो कह तमेव विदित्वा अति मृत्यु में ही, उसको जान करके मृत्यु को अतिक्रांत करके जा सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तो मृत्यु के पार जाने के लिए ज्ञान की जरूरत क्यों पड़ी है, कर्म से क्यों ज्ञान मृत्यु के पार नहीं जा सकते हो, उपासना से क्यों नहीं जा सकते हो, कारण क्या है, कर्म मुक्ति दे सकता है या नहीं दे सकता है, उपासना दे सकता है कि नहीं दे सकता है, और कोई साधन जोग दे सकता है कि नहीं सकता है, मुक्ति कचार कोई नहीं दे सकता है, और कोई मुक्ति दे नहीं सकता, क्यों, कारण क्या है, कर्म इसीलिए नहीं दे सकता। कर्म जो है ना क्या देता है, कर्म फल तो देता है परंतु कर्म बंधन में डालता है, कर्मणा विद्यते जंतु विद्या से विमुच्यते, शास्त्र का निर्देश है, कर्म बनता है, क्यों कर्म बांधेगा, कर्म बनता है, कर्मणा विद्यते जंतु विद्या से विमुच्यते, तस्मात कर्म न कुर्वन्ति जतया पारदर्शी न, ज्योति लोग जो है पारदर्शी लोग, पर को जानने वाले के लोग, वो कर्म नहीं करता है, क्यों, कर्म बंधन का हेतु है, जहां कर्म करोगे तो कर्म के फल की आसक्ति होगी, कर्तृत्व का अभिमान होगा, और जो है ना उसके संस्कार जागेगा, तीन वस्तु कर्म बंधन में डालता है, कर्म फल की चाह होगी, कर्म में आसक्ति होगी, और कर्तृत्व अभिमान जागेगा, तो जहां आसक्ति होगी वहां बंधन है, जहां आसक्ति होगी वहां पतन है, जहां आसक्ति होगी वहां गिरना है। इसीलिए कर्म मुक्ति नहीं दे सकता है। दूसरी बात, कर्म अविद्या को नाश नहीं कर सकता है, क्यों, अविद्या को नाश के बिना विद्या नहीं उत्पन्न होगा, विद्या अविद्या नियंत्रित है, वो तेज तिमिर संगवत, अविद्या नाश हुए बिना ज्ञान नहीं होगा, अविद्या को नाश कौन करेगा, अविद्या को नाश करने के लिए अविद्या का जो विरोधी होगा वही करेगा, जो अविद्या का जो विरोधी होगा ना वही अविद्या को नाश करेगा, तो अविद्या का विरोधी कर्म है क्या, क्यों कर्म और अविद्या में हेतु हेतु मत भाव है। अविद्या है अज्ञान है तो हम कर्म करते हैं, अविद्या है तो कर्म करते हैं, अज्ञान है तो कर्म करते हैं। ये दोनों में कर्म और अविद्या में कार्य कारण भाव है, तो कर्म को नाश अविद्या नहीं कर सकते, अविद्या कर्म को नाश नहीं कर सकते, कर्म अविद्या को नाश नहीं कर सकते। अविद्या जो है, अविद्या जो है कर्म का माता है, तो अविद्या जब तक कर्म है तो अविद्या होते रहेगी, अविद्या रह जाएगी, और जब तक अविद्या है तो कर्म करते रहेंगे। ये दोनों का कार्य कारण भाव है, हेतु हेतु मत भाव है। इसलिए कर्म अविद्या को नाश नहीं कर सकते, कर्म का अविद्या का नाश कौन करेगा? अविद्या का जो विरोधी है, तो अविद्या का जो विरोधी है वही अविद्या को नाश करेगा। तो अविद्या का विरोधी कौन होगा? विद्या होगी। विद्या अविद्या निहंती तेजस तिमिर संगमत, जैसे तेज है अंधकार को नाश करता है, तो अंधकार को नाश करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। प्रकाश के बिना अंधकार नाश नहीं होता है, जैसे प्रकाश के बिना अंधकार नाश नहीं होता ऐसे ही ज्ञान के बिना अज्ञान की नाश नहीं होगा। तो अज्ञान निवृत्तिर मोक्ष, अविद्या निवृत्तिर मोक्ष, तो अविद्या के निवृत्ति के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा, चौथा पुरुषार्थ आपको नहीं मिलेगा। चौथा पुरुषार्थ में जाने के लिए अविद्या की निवृत्ति आवश्यक है, वह अविद्या की निवृत्ति कर्म से नहीं होगा, कर्म उसका विरोधी नहीं, अविद्या का विरोधी नहीं है। अविद्या तभी तो हम कर्म करते हैं, अज्ञान है तभी तो कर्म करते हैं, ज्ञान से कर्म नहीं होता, ज्ञान से कर्म बाधित हो जाता है, ज्ञान से कर्म बाधित हो जाता है, कर्म नहीं रहता है। तो इसीलिए कर्म अज्ञा कर्म मोक्ष को दे नहीं सकता है, तो कर्म मोक्ष को नहीं देगा उपासना, बोले उपासना तो कर्म ज्ञानाधीन है, कर्माधीन है। कर्म करोगे, उपासना करोगे, उपासना से मन को स्थिर करोगे, स्थिर होगा तो जा करके वेदांत वाक्यों का श्रवण करोगे। वेदांत वाक्य का श्रवण करोगे कब करोगे? वेदांत श्रवण करने के लिए क्या चाहिए? आत्मा बारे श्रोतव्य मंतव्य नित्यार्थिव्य आत्मा ने खोलो दृष्टि श्रुते माते विज्ञात इदम सर्वमिदम भवति, जो श्रुति कहती है ना कि किम कर्तव्य अस्मिन संसार है, अस्मिन जीवन है। पूछते हैं क्या करना चाहिए जीवन में, ये संसार में क्या करना चाहिए, तो श्रुति कहती है आत्मा बारे श्रोतव्यम, आत्मा के विषय में श्रवण करो। किम न आत्मा बारे श्रोतव्यम, आत्मा बारे द्रष्टव्यम, आत्मा बारे नित्यार्थिव्यम, आत्मा ने खोले सूते माते विज्ञात जम सर्वम विदितम भवती, आत्मज्ञान हो जाने का सबका ज्ञान हो जाएगा। एक अभिज्ञात सर्व विज्ञातम भवती आती है कि नहीं? तो आत्मा को जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आत्मा के विषय में पहले श्रवण करना चाहिए। तो कहाँ श्रवण करे? रेडियो से श्रवण करे, टीवी से श्रवण करे, फलाना से श्रवण करे, किससे करे? तो श्रुति कहती है श्रोतव्यम श्रुति वाक्य ब्याह, सुनना चाहिए तो श्रुति वाक्य का श्रवण करो, वेदांत वाक्यों का श्रवण करो। वेदांतार्थ विचार न जाए थे ज्ञानम उत्तमम, श्रवण करोगे तब उसका विचार करोगे, विचार करने से ज्ञान होगा, ज्ञान होने से मुक्ति मिलेगी। तो ज्ञान के लिए क्या चाहिए? वेदांत वाक्यों का श्रवण करना चाहिए। तो वेदांत वाक्यों का श्रवण कहाँ से करोगे? आत्मा के विषय में श्रवण कहाँ? वेदांत वाक्य भी है श्रवण, वेदांत वाक्यों से उपनिषद वाक्यों से श्रवण करो, तत्त्वमसि आदि महावाक्यों का श्रवण करोगे तो तत्त्वमसि महावाक्यों का ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी, अज्ञान की निवृत्ति से संसार का बंधन काटेगा। ये बंधन कहाँ से आया? कौन आवबंधा कदम ऐसा आगत कदम विमुक्ति कदम ऐसा कौन आवबंधा, बंधन किसको कहते? कदम ऐसा आगत है, बंधन कहाँ से आया? शिष्य गुरु से प्रश्न करते, गुरु जी बंधन कहाँ से आया? कौन आव बंधन, बंधन किसको कहते? कहाँ से आया? इसकी स्थिरता कैसे हो गई? इसकी निवृत्ति कैसे होगी? ये चार पांच प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि अष्टावक्र गीता में जनक जी ने प्रश्न किया था, कौन कथम ज्ञान हो आपनोदे कथम मुक्ति भविष्य वैराग्यम से कथम प्राप्त मिति ब्रही मम प्रभु। जनक जी ने तीन प्रश्न किया था, किससे? ऋषि अष्टावक्र ऋषि से। गुरु जी ये तो बताइए कथम ज्ञान हो आपनोदे, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे मिलेगी? वैराग्य कैसे प्राप्त हो। ये तीन बात जो है ना, ये तीन प्रश्न उन्होंने जनक जी ने अष्टावक्र ऋषि से किया। अष्टावक्र ऋषि ने इन्हें पूछा, बेटा कैसे पैदा हो, बेटा कैसे रहे, बाप को माने, बाप बेटा के बाप की सेवा कैसे करे, माँ की सेवा कैसे करे, इसको उपदेश दे दीजिए, ये नहीं पूछा। अर्थ कैसे है, राज्य विस्तार कैसे होगा, प्रजा कैसे शांति से रही, ये प्रश्न नहीं पूछा। संसार के विषय में प्रश्न नहीं किया, संसार के विषयों में, राज्य के विषयों में, प्रजा के विषयों में उसने प्रश्न नहीं किया। प्रश्न किया ज्ञान हम कैसे मिले, ज्ञान कैसे मिले, कथम ज्ञान हो आपने, क्यों राजा जनक जानते हैं रीते ज्ञानात्म मुक्ति, बिना ज्ञान से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, और ज्ञान कैसे प्राप्त हो, जिस ज्ञान से के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी वो ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, जिस ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी वो ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, किम कैसे मिलेगी, कथा मुक्ति भविष्यति, मुक्ति कैसे होगी, और वैराग्य से कैसे प्राप्त हो, वैराग्य की प्राप्ति कैसे होगी। अष्टावक्र ऋषि ने कहा, राजन मुक्ति मिच्छित्ता तो विषयान विषवत्त, मुक्ति चाहता है, बोला विषय को जहर समझ करके त्याग दे। बोला यही बात जहां गुरुजी आपको बोलेगा तो वहां से झटपट उठने की कोशिश करोगे, बाबा हमको यहां त्याग करने के क्या है, हम तो और किसी के लिए आया, बेटा कैसे शांत रहे, बेटा कैसे विद्वान हो, बेटा कैसे बुद्धिमान बने, बेटा कैसे उफलाना मिल जाए, हम इसी पूछने के लिए आए यार, कैसे त्याग दे, तो गुरु के पास बैठोगे। अच्छा गुरु जी हमारा थोड़ा काम रह गया, जल्दी जाना पड़ता है, चाहते हैं जो गुरु के वास्ते पिंड छोड़ाओगे कि नहीं, पर तो राजा जनक ने ऐसे नहीं, राजा जनक से कहते हैं मुक्ति मिच्छेता था विषयन विषयवत तेज, विषय को जहर समझ करके त्याग दे, मुक्ति चाहता है तो, हम ऐसे नहीं कहते मुक्ति चाह तुम संसारी हो तो संसार के विषय में प्रश्न नहीं करो, पर तो मुक्ति के विषय में प्रश्न करोगे तो तुमको उत्तर ये मिलेगा, विषय को जहर समझ करके त्याग दो। तो जहर को समझ कर त्याग दो, जहर क्यों त्याग देते, जहर खाने से और विषय भी सेवन करने से, विषय या विषय से ही विषय और विषय में अंतर है, कनकम कनकम ते छह गुना वादों का है, एक खाय हो रहा है एक पाय हो रहा है, क्या कनक कनक करते सौ गुना माधव का है, कनक माने धतुरा और कनक माने सुवर्ण, ये दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, बढ़िया कौन है, सुवर्ण कनक कहते सोना को, कनक कहते धतुरा को, ये दोनों में से कहते कनक कनक करते सौ गुना माधव का है, वो जो जहर है ना, जहर से सौ गुना मादक आए सुवर्ण में आए, एक पाने से पागल हो जाता है, खाने से पागल होता है, तो कौन सा वस्तु खाने से पागल होता है, और नहीं खाओगे तो जेब में रख दोगे तो, और सोना, तो ऐसे ही जनक जी से कहते तो संसार को तो, या मुक्ति यदि चाहता है तो विषय को विष समझ करके त्याग दे। एक आदमी जो है ना, संसार को ऐसा कथा सुन करके इसने घर छोड़ करके चला गया, त्याग करके हिमाचल चला गया, वह सत्संग में बोला संसार को त्याग देना सही है, चलो हम संसार त्याग करके चले जाते हैं, तो पत्नी ने भी कुछ बोला नहीं, चला गया, जाओ ठीक है, जैसे तुलसीदास जी की हुआ ना, तुलसीदास जी का हुआ कि नहीं हुआ, रत्नावाला, तो हिमालय चला गया, हिमालय जा करके तपस्या करने साधन करने लगा, पर कुछ दिन बाद में उसका वैराग्य उतर गया। वैराग्य से पहले ले गया ना, एक घर से वैराग्य लेकर गया था, वो धीरे धीरे वैराग्य हिमालय जाने से उतर जाता है, याद रखना। पहले घर में तो वैराग्य होता, ठीक है, घर वैराग्य का साधन है, घर जो है ना वैराग्य का साधन है, याद रखना, घर में वैराग्य बना रहता है, परंतु हिमालय जब जाते हैं ना तो वैराग्य तो महात्मा बना हुआ व्यक्ति अपने मन को समझाते हैं, कैसे समझाते हैं तो आप भी समझो। रे चित्त चिंतय चिरम चरणो मुरारे पारम गमिष्यसि जतो भवसागरस्य पुत्राः कलत्रमितरे नहि ते सहाया सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकाभम। वो महात्मा अपने मन को समझा रहे, रे चित्त, रे चित्त मेरे प्यारे चित्त, चिंतय चिरम चरणो मुरारे, तू चिंता छोड़ दे मैं प्यारे चिंता, तू चिंता छोड़ दे। क्यों, चिंता क्या अच्छी चीज है क्या? चिंता चिंता दैर मध्य बिंदु मात्र विशेष सजीवा दहते चिंता निर्जीवा दहते चिंता। चिंता चिंता में अंतर क्या है? एक मैदा का बिंदु का फर्क है। तो चिंता किसका क्या करता है, चिंता क्या करती है? चीता चीता मुर्दा को जलाता है और चिंता, आप बताओ ये जो बैठी है सबके मन में चिंता है कि नहीं, किसी ना किसी के विषय में, और कैसे है बताओ, चिंता है कि नहीं किसी के मन में? हर एक आदमी के मन में किसी ना किसी, किसी के बेटा के, किसी के बेटी के, किसी को धन के, किसी को धन के, किसी के नौकर को, किसी के रोग के, बीमारी के, किसी ना किसी की ना किसी चिंता से ग्रस्त है। तो महात्मा का जो चिंता है, मेरे प्यारे चिंता चिंता छोड़ दे, क्योंकि चिंता बुरी चीज है। भगवान राम को भी चिंता हो गई थी, भगवान राम भी चिंता में ग्रस्त था, सुख संतप्त था। वशिष्ठ जी ने उनको कहा, हे राम जी, तू शोक छोड़ दे, चिंता छोड़ दे, हाँ, तेज सुखम अमंगलम मंगलानि च चिंतय सच्चिदघनम आनंदम। हे राम जी, तू चिंता को छोड़ दे, शोक को छोड़ दे, तेज सुखम अमंगलम। तो राम जी ने कहा, शोक क्यों छोड़ दूं? वशिष्ठ जी ने कहा, शोक के मंगल सूचक है क्या? शोक मंगलमय है क्या? तो क्यों रखोगे घर में शोक को? तेज शोकम अमंगलम, ये अमंगल सूचक है, जिसके जिसके मन में शोक हुआ वो जल करके भस्म हो गया। तो रामदेव ने पूछा, किसके मन में शोक हुआ, क्या हुआ? बोले, नारद जी के मन में शोक हुआ, मैं अठारह विद्या पढ़ गया, मेरा फिर भी दुख नहीं गया, शोक नहीं गया। नारद जी ने कितना विद्या पढ़ा? अठारह विद्या। और आप लोग कितना विद्या पढ़े? अठारह विद्या पढ़ने वाला के मन से शोक नहीं गया। सुहम भगवत सोसामित शोकश्य परम परम तारा हेतु सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से कहते, आप हमको शोक सागर से पार कीजिए, मैं शोक संतप्त हूँ, मेरे मन से शोक नहीं गया, मैं शोकाग्नि से जल रहा हूँ, चिंता अग्नि से जल रहा हूँ, मेरे को निकाल लिए, निकाल लिए। नारद जी कहते, क्यों शोक पढ़ा लिखा है कि नहीं? बोले, क्यों नहीं पढ़ा? अठारह विद्या पढ़ा, क्या समझते हो? तो शोक क्यों है? बोले, शोक इसीलिए कि मैं आत्मा को नहीं जानता हूं। स्वयं भगवान सोचा में तम हम शोकश्य परम परम तारही तू, कैसे जाएगा शोक के पास जाएगा? हमने सुना है, तरति शोकम आत्मविद, आत्मज्ञानी लोग शोक सागर से पार जाता है। तो यहां आप हमको आत्मज्ञान का उपदेश कीजिए। तो नारद जी शोक संतप्त से शोक से मर रहा है। उधर अर्जुन को शोक हुआ कि अनात्मा पदार्थ में मेरे आत्मत्व बुद्धि हो गई। अर्जुन के मन में शोक आएगी नहीं? तो भगवान ने कहा, अशोच्छानंद शोषस्तम प्रज्ञा भावदान सभासे गतासु न गतासु नानु सरस्वती पंडिता। भगवान क्या बोले? जिसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए तो उनके भी लिए शोक करके मर रहा है। अशोच्छानंद शोषस्तम, जिसके विषय शोक नहीं करना चाहिए वो शोक कर रहा है। प्रज्ञावान अंधभास से और बुद्धिमान की जैसे बात कर रहा है, तो आपने बुद्धि को ताक में रख दे, मैं जैसा कहता हूं ऐसा सुन, हाँ जैसा कहता हूं ऐसा सुन, सुख जाग दे। तो अर्जुन सुख संतप्त तो रहा, अनात्म जो भाई बंधु है, साला ससुरा, इसके साथ ममता करके आसक्त होकर के वो शोक संतप्त तो हो रहा है, वो भी ऐसे जल गया। ऐसे बहुत से उदाहरण है। इसीलिए शोकाग्नि से बचने के लिए करना क्या चाहिए, आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तरत ही शोकम आत्मभेद, आत्मज्ञान ही केवल शोक सागर से पार जा सकता है, दूसरा कोई नहीं। ये गांठ बांध लो जितना भी हो, क्यों आत्मा में शोक नहीं है, अनात्मा में शोक है, सीधी बात है। ये अनात्मा शोक संतप्त है, आत्मा शोक सागर से पार चले जाते हैं, शोक मुक्त है। तो वशिष्ठ से राम जी को कहते, तू तेज सुखम अमंगलम, अमंगल माए जो शोक है, वो शोक को, चिंता को छोड़ दे, तो क्या करो मैं शोक संतप्त, शोक को त्याग करके। तो वशिष्ठ जी के मंगला निभा, मंगल का चिंतन कर, तो मंगल क्या से जाए, सचित घन आनंदम, सचित घन आनंद आत्मा है, वही मंगल स्वरूप है, उसी की चिंता कर। ऐसे महात्मा अपने मन को समझा रहे, ओ मेरे प्यारे चिंता, तू चिंता छोड़ दे, तू चिंता छोड़ दे, चिंता चिंता देर मध्य बिंदु मात्र विशेष सजीव दहती चिंता, चिंता और निर्जीव दहती चिंता। मुर्दा को जलाता है तो मुर्दा को जलाने वाला अच्छा है कि जिंदा को जलाने वाला अच्छा है, हा? चिंता जिंदा को जलाने वाली अच्छी है ना, हा? चिंता ही अच्छी है, पर चिंता तो जिंदा तो है कम से कम। तो महात्मा कहते चिंता अच्छी नहीं है। मोटा तगड़ा आदमी था, क्यों आजकल इतना दुबला पतला हो गया, क्या करो, चिंता मेरे को खा जा रहा है। क्यों खा जा रहा, बेटा बात नहीं मानता है, लड़की बात नहीं मानती है, उनके लिए बेटे चिंता 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 चिंता। अरे माँ बाप मर रहा है दूसरा चिंता से, और बेटा बेटी मर रहा है दूसरा चिंता से, सब अपना अपना चिंता में लगा हुआ है। तो चिंता 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 कहता है, तो मैं चिंता छोड़ करके क्या करूं, मेरा चिंता करना स्वभाव है। चित्त का स्वभाव क्या है, चिंता करना, चिंता के बिना रह नहीं सकता। बहुत आदमी कहते महाराज आप टेंशन नहीं है, खाना हजम नहीं हो रहा है, तो खाना हजम करने के लिए क्या चाहिए, टेंशन चाहिए, टेंशन। टेंशन क्या कहते, बहुत आदमी जो टेंशन में पाले हैं, बहुत आदमी, और बिना कुछ बोलते कुछ व्यक्ति ऐसे होता बिना टेंशन से जिंदा रहता है। तो चिंता चिंतय चिरम चरणो मुरारे, तो चिंता छोड़कर एक काम कर, मुरारी भगवान के चरण कमलों का चिंतन कर। क्या चिंता को छोड़ दे, तो चित्त कहता मेरा स्वभाव है चिंता करने का, मैं चिंता के बिना रह नहीं सकता, टेंशन के बिना रह नहीं सकता। तो टेंशन के बिना रह नहीं सकता, चिंता के बिना रह नहीं सकता, तो एक काम कर, चिंता करना ही है, मुरारी भगवान के चरण कमलों का चिंतन कर। किसका करोगे, भगवान के चरण कमलों का चिंतन कर। तो मन पूछता है, चित्त पूछता है, मुरारी भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने से हमको क्या मिलेगा, मिलना चाहिए ना कुछ, फलाशक्ति क्या है, फलश्रुति क्या है। अरे भाई गणेश श्रुति, गणेश वो गणेश के श्रुति पढ़ते, फलाना श्रुति पढ़ते, उसका फलादेश होता है कि नहीं, फलश्रुति पढ़ते कि नहीं, मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा, दुख मिलेगा, बेटा होगा, शादी होगी, फलाना होगा, जम कर ले, फलश्रुति करता है, क्या करता है, किसी भी स्तुति का स्तोत्र का पाठ करो, फलश्रुति क्या आएगा, तुमको वैकुंठ मिलेगा, असमुद्र हिमालय पर्यंत साम्राज्य मिल जाएगा, और क्या मिलता है, सब कुछ मिल जाता है, तो जेब खाली क्यों रहता है। तो मिलता है मिलता है मिलता है सालों से तो मान इसीलिए मन पूछता है हमको कुछ मिलना चाहिए ना, बिना मिले कैसे हम चरण कमलों का चिंतन करें, क्या मिलेगा? तो मन कह दिया, महात्मा कह दिया मिलेगा, तेरे को भी मिलेगा, पारम गमिष्यसी, तू पार हो जाएगा, तू पार हो जाएगा। बोले किसका पार हो जाएगा? भवसागर से, भवसागर तारण कारण ही, भवसागर के पार जाने का कारण क्या है? भगवान के चरण कमलों का चिंतन कर, मुरारी भगवान के चरण कमलों का चिंतन कर तो तू पार हो जाएगा। तो भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने की क्या जरूरत है? तो पार कैसे जाएगा तू? पारम गमिष्यसि भव सागर से, संसार सागर, ये संसार को सागर दिखता है क्या? परिवार सागर है क्या? महात्मा आपने को बतलाता है कि तू संसार सागर से पार जाने के लिए तू मुरारी भगवान के चरण कमलों का चिंतन कर। इसको बिना चिंतन करने से नहीं जाते, हवा जहां से चले जाएंगे, जल जहां से सागर पार कर जाएंगे। अरे भाई, ये सागर नहीं है, हिंद महासागर नहीं है, अरब सागर नहीं है, बंगोपसागर नहीं है, बंगाल की खाड़ी नहीं है, ये सागर है भव सागर। इस सागर का नाम भव सागर। भव माने जन्म मृत्यु, को दीर्घ रोग भव एव साधो, संसार से सबसे बड़ा रोग कौन है? इसको रोग भी बतलाया, ये भव को रोग भी बतलाया। को दीर्घ रोग भगवान शंकर आचार्य पूछते हैं, को दीर्घ रोग भव एव साधो, साधो भव ही जन्म मृत्यु रूपी जो भव है यही सबसे बड़ा रोग है। ये संसार सागर से पार कैसे जाएगा? इसका नाम संसार सागर है, इसका पार आसानी से नहीं, अनंत जन्मों तक चले आ रहे, डुबकी लगाते हैं मर जाते हैं फिर पैदा होते हैं, लहर पैदा होते हैं, लहर के रूप में आ जाते कि नहीं? ये जो छोटे छोटे शरीर है छोटा लहर है, हम लोग से बड़े लहर हो गया, पुराना लहर हो गया, ये जो है ना लहर है, फिर मर जाएंगे तो लहर डूब जाएगा, पानी में मिल जाएगा, फिर दूसरा लहर के रूप में आ जाएंगे। आएंगे तो वही आएंगे, पर लहर बदल करके आएंगे तो नहीं पहचानेगा, कितना लहर बड़ा लहर आया, आये जगह जगह लहर आया। तो पारम गमिष्यसि जातो भव सागरस्य, तो भगवान जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से पार जाएगा। ये जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर है, इस सागर से पार जाने के लिए तेरे को मुरारी भगवान के चरण कमलों का चिंतन करना पड़ेगा। बोले वाह रे वाह, भव सागर से पार जाने के लिए मुरारी भगवान के चरण कमल का चिंतन करने की क्या जरूरत है? ये मन पूछता है, तुम्हारे पास कहते कैसे जाएगा पर? तो मेरे पास तो मेरा परिवार है, कलत्रमितरे पुत्रा है, कलत्रमितरे मेरा बेटा है बेटी है, 16-20 आदमी का हमारा बड़ा परिवार है, मरने के बाद में सब हमको पार पहुंचा देगा, देगा कि नहीं देगा? बड़ा परिवार है, विशाल परिवार है, कहते ना अज्ञवान धनोस्मी, गीता में पढ़ते ना अद्यतन वानोस्मी कन्यास्ती सदृशों दक्षिण दक्षिण मदिशी त्यगन अभिमहिता, आसुरी संपत्ति वाले बोलता है कि नहीं मेरा बड़ा परिवार है, ये सब मिलकर के मेरे को पार कर देगा, दूसरा की जरूरत नहीं, नहीं मेरे एक हमारे उधर है एक आदमी है तो बोलता था हमारे साथ घूमने निकलता था। बोले बस स्वामी जी, हमारा चार बेटा चार कंधा देने वाले बहुत हार, क्या करने का है? कंधा देने वाले चार ही तो चाहिए चार तरफ, बस हमको कोई चिंता नहीं, मरा भी ऐसे ही है। चार बेटा था, अलग अलग रहता था, उनके साथ कोई नहीं रहता था, फिर भी बोलता चार बेटा अभिमान था ना। तो कहते हैं कि मेरा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? पुत्रा बहुवसन है, पुत्रा कलत्र मितरे सहाया, इतरे माने बंधु बांधव आदि सब मिलकर के मेरे को संसार सागर से पार उतार देगा। महात्मा कहते पुत्रा कलत्र मितरे नहीं ते सहाया, ये तेरे सहायता करने वाला मरने के बाद में कोई नहीं है, याद रखना। तू देखता रहेगा, वो नरसिंहगढ़ हाउस है ना, मर गया था ना, तो उसको जलाने के लिए गया, जला करके आया, उसका हड्डी भी जला नहीं, कुछ जला नहीं, इसे आध कच्चा छोड़ करके चले आया लड़का, पेपर वाला लिखता था, आध कच्चा छोड़ करके चले आया। फिर पेपर वाला गया देख करके आया, फिर उसके लड़का के बोले कैसे करके आया तू, अपने बाप को कम से कम अच्छे तरह से जलाना चाहिए ना, फिर जाया फिर जलाया, तो ऐसे छोड़ करके आ जाएगा वहां से, कोई आए जाएगा नहीं, कोई भी सहायता करने वाला तुम्हारा नहीं है। पुत्रा कलत्र मितरे नहीं ते सहाया, क्यों का सर्वम बिलो गय सके, ये मेरे प्यारे चित्त तुझ देख सर्वम बिलो गय सके मृग तृष्णिका अभम, ये कैसा है कहते, ये संसार कैसा है मृग तृष्णिका के जैसे है, देखने भर के लिए है, मरुभूमि के जल जैसा देखते कि नहीं, वो प्यास बुझाने वाला नहीं है, मरुभूमि में जल तो दिखता है पर प्यास बुझते नहीं, प्यास बुझाने वाला नहीं है। तो जैसे मरुभूमि का जल देखने भर के लिए है, ऐसे परिवार के सदस्य भी मेंबर भी कैसा है, इष्ट मित्र कैसा है, बंधु बांधव कैसा है, देखने भर के लिए है, परलोक के मार्ग में जाने के लिए कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। परलोक के धर्मानुगच्छति जीव एकलोका, केवल तुम्हारे साथ तुम्हारा कौन जाएगा, धर्म अधर्म पाप पुण्य, पापे न पापम लोकम नयति पुण्य न पुण्यम लोकम नयति उभय मनुष्य लोकम प्राप्त होती, पाप से पाप लोक ले जाएगा नरक ले जाएगा, धर्म से स्वर्ग ले जाएगा, और दोनों मनुष्य लोक में आएगा, उभय मनुष्य लोकम, दोनों पाप पुण्य बराबर हुआ तो कहां जाओगे, ये मनुष्य लोक में आएगा, और पाप अधिक होगा तो और धर्म अधिक हुआ तो दोनों का भारी पल्ला किसका भारी रखना चाहती है, कुछ भी करना जाना ना नहीं आए तो ज्ञान आप मुक्त हो अपनी आप, तो ज्ञान प्राप्त करो आप पुण्य को जानो, रीते ज्ञान न मुक्ति, ये कुछ भी करो तो धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, ये मेरे प्यारे चित्त तेरे साथ जाएगा तो तेरा कर्म ही जाएगा, धर्म ही जाए, कर्म और धर्म में अंतर नहीं समझना, जो धर्म है वो कर्म है, जो कर्म है वो धर्म है, सत्कर्म को धर्म कहते असत्कर्म को अधर्म कहते, शास्त्र विरुद्ध कर्म को पाप कहते शास्त्र विहित कर्म को धर्म कहते पुण्य कहते, तो साथ जाने वाला और कोई नहीं है, कौन तो मन महात्मा अपने मन को समझा, रे चित्त चिंते चिरम चरणों मुरारे, तो घर द्वार छोड़ करके आया यहां गुफा में बैठा है, अभी उसका चिंतन क्यों करता है, वो जैसे आपको दुर्गा सप्तशती पड़ेगी नहीं, दुर्गा सप्तशती तो वहां एक कथा आती है समाधि वैश्य, हाँ समाधि वैश्य राजा सूरत, राजा सूरत जो है ना सब छोड़ छाड़ करके जंगल चला गया, समाधि वैश्य भी सब छोड़ छाड़ करके जंगल चला गया, दोनों रास्ता में जंगल में मिला, क्यों छोड़ करके गया, समाधि वैश्य जो है ना सब छोड़ करके गया, क्यों दिया, उसको धक्का देकर निकाल दिया, क्वित्तम क्वधनम दे सब छीन छान लिया, क्यों बेचारा कंजूस था, वो स्वयं बोलता है मैं किसी को कुछ देता नहीं था, बेटा की शादी नहीं करता था, बेटी की शादी नहीं करता था, पैसा खर्चा हो जाएगा करके खाने भी नहीं देता भला नहीं देता, इसीलिए हमको कंजूस समझ करके मार करके सबने निकल दिया, धन द्वारा हमने धन तो जीवन में बहुत कमाया था, सब संदिग्ध भर करके रखा है परंतु देता किसी को नहीं है, इसीलिए हमको निकल दिया, उधर सूरत राजा सूरत को क्यों निकाल दिया, वो शत्रुओं से हार गया था, ब्लेच्छों से हार गया था, तो दोनों एक साथ जंगल में इकट्ठा हुआ, तो राजा सूरत ने उसे पूछा और समाधि वैश्य से, और समाधि वैश्या ने उनसे पूछा तुम कैसे जंगल में आए हो, तो उसने पूछा तुम कैसे आए हो, बोला हमको लड़का ने मार करके निकाल दिया। बोले क्यों, ऐसी ऐसी बात हो गई, तो तुम कैसे आए, हमारे राज्य छीन लिया चला गया, फिर अभी क्या करो, सब मार करके निकाल दिया, फिर भी लड़का लड़का के विषय में हमारा मन में बड़ा युद्ध होता रहता है, यदि मार दिया निकाल दिया फिर भी उसके विषय में चिंता होती है, कैसे खाता होगा पीता होगा रहता होगा जीता होगा देता होगा देता होगा, धन तो बर्बाद नहीं हो गया, ये चिंता होती रहती है। उसने कहा हमको भी राज्य छीन लिया, फिर भी हाथी कैसे आए घोड़ा कैसे आए, हमारा पशुओं के लिए चिंता है, तो अभी क्या करें, चिंता से कैसे बचा जाए, तो वहां चलो ओम मुनि के आश्रम में। तो एक मुनि जाके आ नाम उनका क्या समान नहीं, वो तो वैश्य है, ये एक ऋषि था ना, क्या नाम उनका, मेधा ऋषि के आश्रम में चलो। तो मेधा ऋषि ने कहा सब माया के खेल है, तुम माया का उपासना करो सब ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब है तुम कुछ भी करो छोड़ करके जाओगे ना, तो और महात्मा के जैसे सूरत राजा के जैसे समाधि भविष्य के जैसे फिर हो, कितना भी मार दे कितना भी पी दे गाली दे कितने तकलीफ दे, परंतु उससे से चिपका हुआ था ना वो गोंद जल्दी नहीं निकलता है, वो गोंद जल्दी नहीं निकलता है। इसीलिए मानव जीवन का जो लक्ष्य चतुर्थ पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम और ये चारों पुरुषार्थों में से श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन हुआ, तो मोक्ष कैसे मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा। ज्ञान कैसे होगा, वेदांत वाक्यों के श्रवण तत्त्वमस्यादि महावाक्यों के श्रवण करने से, वेदांत वाक्यों का श्रवण करने से। तो वेदांत वाक्यों का श्रवण कहाँ करोगे, कैसे करोगे, किससे करोगे, अरे वेदांत वाक्यों का श्रवण उपनिषद के श्रवण करने से वो कहाँ करोगे, गुरुमुख से श्रवण करोगे, गुरुमुख से श्रवण करके गुरुमुख से श्रवण करने के लिए कहाँ जाओगे, सत्संग सत्संग में जाओगे, सत्संग कहाँ मिलेगा, चौपाटी में, प्रेमपुरी में, चौपाटी में नहीं मिलेगा, प्रेमपुरी में श्रवण करोगे, यहाँ का श्रवण करोगे, तो श्रवण के बाद मनन करोगे, विवेक होगा वैराग्य होगा सत्संपत्ति आएगी, फिर साक्षात साधन तत्त्वमसी महावाक्य का श्रवण करोगे, ज्ञान होगा, ज्ञान से मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलने से फिर सब सर्वे भवन तो सुखी नहीं हो जाएगी, सर्वे भवन तो हो सा नहीं, आप तो सुखी ना हो जाए, सर्वे की सबके सुखी कोई नहीं चाहता, सब अपने सुख चाहता है भाई, आत्मा ना सुख काम आ जाओ, आत्मा के सुख की कामना के लिए सब प्रयत्न करता है, तो आपने सुख करोगे तो दुनिया के भी सुख देखोगे, आपने दुखी हो जाओगे दुनिया को सुख क्या करोगे, आपने जब खाली है दुनिया को दान करने के लिए दूसरा तुम दूसरा दियो करोगे, पहले आपने जेब भरो पर दान कर सकते हो, जेब खाली करो, आपने जब खाली है तो दोगे क्या, आपने ज्ञान नहीं है तो अज्ञान के नाश करने के लिए उपदेश हम कहां से करेंगे, तो आपने ज्ञान के लिए वेदांत वाक्यों का श्रवण करना ही पड़ेगा, श्रवण के बाद क्यों, वेदांत वाक्यों के श्रवण के बिना ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान के लिए श्रवण करना ही पड़ता है। आत्मा बारे श्रोतव्य मंतव्य निर्दिव्य मैत्री आत्मा निकोलो दृष्टि श्रुते मते एकदम सर्वम विज्ञातम भवती, आत्मज्ञान होने के भी सबका ज्ञान हो जाता है, एक विज्ञात सर्व विज्ञातम भवती, एक ही ज्ञान होने से सबका ज्ञान, तो एक ज्ञान होने से सब ज्ञान होता है, सब ज्ञान से सर्वम खलबीजम ब्रह्म निहन अनास्ते किंचन करके मुक्ति हो जाती है, सर्वम खलबीजम ब्रह्म बिना और कुछ भी नहीं। हरिओम पूर्णमदः।